G20 सम्मेलन की शुरुआत आज से हो रही है। इटली के रोम में होने वाली इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। रविवार तक चलने वाले इस सम्मेलन में कोविड महामारी, जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला बैठक के दौरान उठने वाले मुद्दों के बारे में बताते हुए कहते हैं,
प्राइम मिनिस्टर विल बी इन रोम इटली फ्रॉम द 29th टू द 31st ऑफ अक्टूबर। He would be in Rome to attend the G20 summit at the invitation of the Prime Minister of Italy, His Excellency Mr. Mario Draghi. Italy's theme for its presidency is People, Planet, Prosperity. It actually comes from the 2030 UN Agenda for Sustainable Development. There are 5 P's here, but Italy has chosen to retain the 3 P's as being the theme for the G20 summit. And the focus of Italy is on recovery from the pandemic and strengthening global health governance, economic recovery and resilience, climate change and energy transition, and sustainable development and food security.
G20 बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लासगो में होने वाले COP26 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। विश्व नेताओं का यह सम्मेलन सोमवार और मंगलवार को होना है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी वैश्विक चुनौतियों पर भारत का रुख सामने रखेंगे। हर्षवर्धन श्रृंगला इस बारे में कहते हैं,
द प्राइम मिनिस्टर विल डिलीवर द नेशनल स्टेटमेंट एट द वर्ल्ड लीडर्स समिट ऑन द 1st of November। ही विल पार्टिसिपेट इन लीडर्स लेवल इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय द COP26 प्रेसिडेंसी अराउंड द थीम्स ऑफ क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, अडैप्टेशन एंड बिल्डिंग रेजिलियंस, क्लीन टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड डिप्लॉयमेंट। सो देयर आर several sessions within the COP26, but there are also a number of side events. One of the important events is the launch of the Global Green Grids Initiative, the One Sun, One World, One Grid of the International Solar Alliance.
इस सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री मोदी अपने ब्रितानी समकक्ष बोरिस जॉनसन के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। और अब बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, जिनका कहना है कि भारत किसी भी चुनौती से निपटने में सक्षम है। गुरुवार को चंडीगढ़ के पास रामगढ़ में टर्मिनल बैलिस्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला में एक कार्यक्रम में बोलते हुए राजनाथ सिंह ने कहा,
भारत हमेशा से एक शांतिप्रिय देश रहा है और आज भी है, और किसी भी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट को अपनी ओर से शुरू करना हमारे वैल्यूज के, हमारे मूल्यों के सर्वथा खिलाफ है। पर इसके साथ ही यह भी उतना ही सही है कि यदि आवश्यकता होती है तो हमारा देश किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार भी है। पूर्व राष्ट्रपति या महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी कहा करते थे कि इस दुनिया में भय का कोई स्थान नहीं है, एक शक्ति ही दूसरे शक्ति का सम्मान करती है। भारत को भी हम सशक्त भारत बनाना चाहते हैं ताकि दुनिया में बड़ी से बड़ी ताकत के सामने हमको आंख झुकाकर बात न करना पड़े, बल्कि आंख में आंख डालकर बात करने की हम स्थिति में हों, ऐसा सशक्त भारत हम बनाना चाहते हैं।
रक्षा उपकरणों में टेक्नोलॉजी की भूमिका पर राजनाथ सिंह कहते हैं,
आज की वॉरफेयर स्ट्रेटजी बहुत डायनेमिक है और इसमें टेक्नोलॉजी का डोमिनेशन आने वाले समय में और स्वाभाविक रूप से बढ़ता जाएगा, और इंडिजिनस कैपेबिलिटीज के साथ कंटेम्प्रोरी बने रहने के लिए खुद को प्रिपेयर भी करना होगा, और इसके लिए टेक्नोलॉजी फोरकास्टिंग को मजबूत करने और कटिंग एज मैन्युफैक्चरिंग और टेस्ट कैपेबिलिटीज में इन्वेस्ट करने की भी आवश्यकता है।
इस अवसर पर CDS जनरल विपिन रावत ने भी टेक्नोलॉजी को महत्वपूर्ण बताया,
हमारे प्रतिद्वंदी बड़ी तेजी से टेक्नोलॉजी वॉरफेयर में इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे को भी इसलिए मुकाबला करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना जरूरी है।
और अब बात आर्यन खान ड्रग्स मामले की। अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा है कि वह एक दो दिन में जेल से बाहर आ जाएंगे।
आज हाई कोर्ट ने दोनों साइड की दलीलें सुन के 3 अक्यूज को बेल ग्रांट करा है। आर्यन खान नंबर 1, अरबाज मर्चेंट नंबर 2 एंड एक लड़की है, उसका नाम है मुनमुन धमेचा। उन तीनों को आज हाईकोर्ट ने बेल दिया है। पक्का डिटेल्ड ऑर्डर कल मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि ये तीनों अक्यूज जो हैं ये कल या शनिचर तक बाहर आ जाए।
इस मामले की जांच कर रहे नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी समीर वानखेड़े आरोपों के घेरे में हैं। उन पर जानबूझकर आर्यन खान को फंसाने और रिश्वत लेने के आरोप लग रहे हैं। आर्यन खान को जमानत मिलने के बाद महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर अपने पुराने आरोप दोहराते हुए कहा,
जिन लोगों पे ये मामला बनाया गया है ये फर्जी है, न्यायालय में जाएंगे, जो एविडेंस है हम उनको देंगे, ये मामला न्यायालय से क्वैश हो जाएगा। लेकिन योगा योग है आज कि जो अधिकारी ने इन लड़कों को जेल में डाला था आज वही डर के मारे हाईकोर्ट में गया कि ये पूरी जो जांच महाराष्ट्र की पुलिस मुंबई की कर रही है इसे सीबीआई या एनआईए के तरफ ट्रांसफर किया जाए, और मुंबई पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार करने से पहले इनको 72 घंटे की नोटिस दी जाएगी। जेल में डालने वाला आज जेल में जाने से डरने लगा। हमें लगता है जो फर्जीवाड़ा इन्होंने किया है खुल खुल के सामने आने लगा है।
समीर वानखेड़े के विरुद्ध लगे आरोपों की विभागीय जांच शुरू हो चुकी है। इधर मुंबई पुलिस भी समीर वानखेड़े के विरुद्ध शिकायतों पर जांच शुरू कर रही है। मुंबई पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए समीर ने बॉम्बे हाईकोर्ट की शरण ली है, जहां से उन्हें गुरुवार को कुछ राहत भी मिली। समीर के वकील अतुल नंदा इस बारे में बताते हैं।
अगर कोई भी एफआईआर या कोई भी इन्होंने अरेस्ट करना है मेरे क्लाइंट को तो 72 घंटे मतलब 3 दिन वर्किंग डेज का नोटिस दिया जाएगा, ये फैसला हुआ।
यह मामला किसी बॉलीवुड फिल्म की ही तरह सनसनी, साजिश और कई उतार चढ़ाव से भरपूर है। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्व रत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।